ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो अभी का जो ये सत्र है मुरली रिवीजन, तो मुरली रिवीजन में हम आपस में लेन देन, इसमें केवल सुनना नहीं है लेकिन आपको भी कुछ सुनाना है। आपस में हम मुरली की पॉइंट की लेन देन करते हैं, इसलिए इतना पीछे बैठने की जरूरत नहीं है। तो रिक्वेस्ट है जो ज्यादा पीछे बैठे हैं वो सभी आगे आकर बैठेंगे। सभी ने आज प्यारे बाप दादा की मुरली सुनी, आज बाबा ने हम सभी को कौन सा टाइटल दिया, क्या हो तुम? वंडरफुल रूहानी यात्री, रूहानी यात्री। तो बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई कि सबसे अच्छी टॉपिक कौन सी, सबसे अच्छी टॉपिक रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा, आज मुरली में कहा ना। तो बाबा ने कहा इस पर विचार सागर मंथन करना है। ऐसे सुंदर सुंदर टॉपिक अपने पास नोट करके रखने हैं और एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। तो करेंगे विचार सागर मंथन जो बाबा ने कहा। तो एक नियम रोज की मुरली से ये बनाना कि मुरली तो सुनते हैं लेकिन अगर आप चाहते हो मुरली याद रहे, मुरली की एक एक बात हमारे अंदर समाती जाए, मुरली का पूरा सुख मिले, मुरली में पूरी एकाग्रता रहे, तो रोज की मुरली से एक पॉइंट लेकर के उसके ऊपर चिंतन करना, जो आज बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो, उसके ऊपर चिंतन करना बहुत 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 जरूरी है। बाबा ने कहा ना कि विचार सागर मंथन करो, तो विचार सागर मंथन करने से क्या होगा, हम क्यों करें, क्यों जरूरी है? बुद्धि बिजी रहेगी, तो बुद्धि और चीजों में भी तो बिजी रहती है। आजकल तो बिजी बुद्धि को बिजी करने वाली बहुत चीजें हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितना हम ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे उतना हम व्यर्थ से बचे रहेंगे, और जब व्यर्थ से बचे रहेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी, पावरफुल बनती जाएगी, और जितना आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी फिर उसका रिजल्ट क्या होगा। आज दुनिया में कहते हैं ना, किसी को आप ज्ञान सुनाते हो तो वो सामने वाला कहता मुझे सब पता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे सब पता है, लेकिन क्या करें, आगे क्या बोलता है, लेकिन क्या करें, हो जाता है ना। हमें पता है व्यसन नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही तो बोलते हैं ना दुनिया में, हमें सब पता है लेकिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आत्मा कमजोर है, आत्मा है ना, अब कमजोर है इसलिए वो कर्मेंद्रियों के अधीन है, और जैसे आत्मा शक्तिशाली बनेगी कर्मेंद्रियों की राजा बन जाएगी फिर। इसलिए चिंतन करना बहुत जरूरी है, जितना हम ज्ञान का चिंतन मंथन करेंगे उतनी हमारी आत्मा की चमक बढ़ेगी, आत्मा शक्तिशाली बनेगी, उतना वो खजाना हमारा अपना बन जाएगा, वही समय पर काम आएगा। और चिंतन करने का बहुत अच्छा तरीका है डायरी पेन लेकर के बैठ जाना और एक पॉइंट लेकर के उसके ऊपर लिखना, जो लिखते हैं वो हमारा अपना बन जाता है, फिर आपका योग भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको ज्ञान सुनाने की इच्छा करेगी। तो आज की मुरली से ये गिफ्ट लेके जाना, ठीक है, सौगात मधुबन से, है ना, ये रोज। लेकिन होता क्या है, आलस कि हाँ लिखेंगे कल से, ऐसे है कल से, लेकिन वो कल आता ही नहीं है। और कई बार कई लोग बोलते हमारा चिंतन चलता ही नहीं है। बाबा तो कहते हैं हाँ चिंतन करो, लेकिन मेरा चिंतन चलता नहीं है। है ऐसा कोई समस्या किसी है? चिंतन तो चलता है, लेकिन ज्ञान का चिंतन नहीं चलता, तो कौन सा चिंतन चलेगा? हाँ दोनों में से एक का चिंतन चलेगा, या तो व्यर्थ का चलेगा या तो ज्ञान का चलेगा। अब ज्ञान का हम चिंतन नहीं करेंगे तो व्यर्थ चलेगा। अभी देखो आपको चार लोगों के बीच में कोई आपको अपशब्द बोल दे, तुम तो बिल्कुल पागल है, बुद्धू है कहीं का, चिंतन नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? हा? कितना हम उसको घोटते रहते हैं, चार लोगों के बीच में इसने मुझे पागल बोल दिया, इसने क्या समझा, मेरी इंसल्ट कर दी। हा? उसको कितना चिंता, सारा दिन क्या महीनों बीत जाता है, साल, जब भी उसको देखेंगे अच्छा इसी ने मेरे को बोला था, आज तक याद है। हा? 10 साल बीत जाएगा, 20 साल, पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन उसका पागल शब्द नहीं निकलता, देखते ही वो याद। और बाबा कहते तुम मेरे नैनों के नूर हो, दिल तख्त नसीन हो, हम रिवाइज भी करते हैं। और किसी ने अचानक पूछ लिया आज का वरदान है तो क्या होता है? सिर खुजलाना चालू कर देते हैं, वरदान तो बहुत अच्छा था है ना, वरदान बहुत अच्छा था, लेकिन है ना एक जरा सी पॉइंट बता दो, है ना उसे थोड़ा सा हिंट दे दो, ऐसे करने लगते हैं। अब भगवान कि ये सुंदर सुंदर महावाक्य वो हमसे निकल जाता है और पागल शब्द अंदर में समा जाता है, कारण जो बाहर निकालना चाहिए था जिस चीज को वो अंदर में जा रहा है, और जिस चीज को अंदर समाना चाहिए वो बाहर जा रहा है, कारण अब हम देख लें तो बहुत जरूरी है ना विचार सागर मंथन करने की। विचार सागर मन, इसलिए आज बाबा ने कहा अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप एक महीना आप एक ये होमवर्क करो, रोज की मुरली से है ना 8-10 बातें, नहीं तो कम से कम 1-2 बातें, आप 1-2 बातें निकालो, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, खुशी बढ़ाने वाले। आपके पास एक महीने में कितने पॉइंट हो जाएंगे, और रोज उसको एक बार रिवाइज कर लो, और एक उस पर एक पॉइंट लेकर के लिखो जरूर, है ना, लिखने से वो हमारा अपना बन जाता है। तो बाबा ने कहा रूहानी यात्रा, अभी हम यात्रा पर हैं, अब इसके ऊपर चिंतन करते हैं, यात्रा पर हैं, कौन सी यात्रा कर रहे हैं? रूहानी यात्रा। एक है जिस्मानी यात्रा जो शरीर के द्वारा करते हैं, रूहानी यात्रा हम कैसे करते हैं? रूह के द्वारा करते हैं। कहाँ करते हैं, कहाँ जाते हैं? परम धाम जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? सूक्ष्म मोतन जाते हैं, और पांडव भवन जाते हैं। अच्छा हाँ, पांडव भवन में 4 धाम है ना, चारों धामों की तो यात्रा करते हैं ना, जानते हैं चारों धाम कौन है? चारों धाम कौन कौन से, नाम बताओ। बद्रीनाथ। अच्छा हाँ, कौन सा धाम? केदारनाथ। क्या बोल रहे हैं? हाँ वो तो लौकिक दुनिया के धाम है, ये अलौकिक दुनिया के बाबा ने कौन से धाम बताए हैं? हाँ बाबा का कमरा, और दूसरा बाबा का कमरा हिस्ट्री हाल, बाबा का कुटिया शांति स्तंभ। तो चारों धामों की यात्रा करते हैं? करते हैं रोज या कभी कभी? बाबा ने कहा रोज है ना इन चारों धामों की यात्रा करना। बाबा के कमरे में कब पहुंचना है अब बताओ? बाबा चारों धाम की 4 विशेषता बाबा ने बताई, बाबा के कमरे में कब पहुंचना है? जब अशरीर ही बनो। ब्रह्मा बाबा का कमरा है ना, बाबा ने वहां पर क्या किया? तपस्या करके संपन्न और संपूर्ण बने, याद रखना। आपने चारों धाम को तो याद रखा, लेकिन विशेषता भी याद रखना। जब बाप समान बनने की इच्छा हो, हम सबकी इच्छा क्या है? बाप समान बनना। अच्छा भाई लोग बोल रहे हैं बाप समान बनना, माताओं की तरफ से तो आवाज ही नहीं आई, आपके को क्या समान? बाबा समान बनना है ना, नसीब से बोलो ना उसमें। अच्छा जो बाप समान बनेगा वही क्या बनेगा? आज बनेंगे बाबा समान, वर्तमान में तो भविष्य में क्या बनेंगे? बाबा क्या जाकर के बनते हैं? श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तो हम भी उन जैसा बनेंगे। तो बाबा ने कहा बाप समान बनना है तो बाबा के कमरे में पहुंच जाओ। और कुटिया में कब पहुंचना है? हाँ, जब कभी दिल से कष्ट हो जाओ, उदास हो जाओ, हाँ, तो बाबा की कुटिया में पहुंच जाओ। क्योंकि बाबा कुटिया में क्या करते थे? पत्र लिखते थे बच्चों को। तो अनेक प्रकार के बच्चों के पत्र आते थे बाबा, है ना, समस्याएं, कोई परिस्थिति आती थी, कोई बातें आती थी, तो बाबा को पत्र लिखते थे। और बाबा वहां से पत्र लिखते थे, उमंग उत्साह भरा वाला पत्र बाबा लिख करके बच्चों को भेजते थे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि उदास हो जाओ, दिल से कष्ट हो जाओ, तो बाबा के कुटिया में पहुंच जाओ। और हिस्ट्री हाल में कब पहुंचना है? हाँ, तो हिस्ट्री हाल में शिव बाबा आकर के मुरली चलाते थे ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो कितनी अच्छी बात कि मुरली क्या है? शुद्ध संकल्प का भंडार। अगर अशुद्ध संकल्प को खत्म करना है, व्यर्थ संकल्प को खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? शुद्ध संकल्पों का खजाना। तो इसलिए बाबा ने कहा हिस्ट्री हाल में पहुंच जाओ। और शांति स्तंभ पर, हाँ, क्योंकि वहां सबसे शक्तिशाली आत्मा ब्रह्मा बाबा का जहां पर अंतिम संस्कार हुआ, तो उसे शक्तिशाली शक्तियां अपने अंदर भरनी है, तो शांति स्तंभ पर पहुंच जाओ। ते रोज, है ना, ये चारों धामों की यात्रा करना है। अच्छा, तो ऐसे बाबा ने कहा रूहानी यात्रा हो, हमारी परम धाम की यात्रा है। तो परम धाम की जब यात्रा आपकी चलती है, तो आप परम धाम पहुंचते हो या आधे रास्ते से वापस आ जाते हो? कई है ना, हम परम धाम, है ना, परम धाम की ओर जाने की तो कोशिश करते हैं, हाँ, कई कई पहुंच जाते हैं, कई कई हैं तो वो तो पहुंच जाते हैं। एक मिनट तक रहेंगे, मैं आत्मा हूं, परम धाम का वासी हूं, ज्ञान सूर शिव बाबा मेरे सम्मुख है, उसकी सारी शक्तियां मुझ में समा रही है, दूसरे मिनट वापस, पता भी नहीं चलता हम कब वापस आ गए। और फिर क्या संकल्प चलने लगता, आते ही वापस, अगर उस समय संकल्प चल जाए कि हमें वापस नहीं जाना है, लेकिन पता नहीं चलता, वापस आ गए, फिर बुद्धि में आया कि रे अभी तो कपड़े भी धुलाई करना है, सब्जी बनाना है, तो किस चीज का आज बना लें? आज बना लेते हैं, टमाटर भी रखा, बैगन भी रखा, टमाटर का सब्जी बना लेते हैं। और कपड़ा भी है ना, कपड़े धुलाई करना, झाड़ू पोछा भी तो करना है, इतना सारा काम। फिर सफेद लाइट हो गई, और योग में वो कपड़ा भी धुलाई हो गया, टमाटर की सब्जी बन गया, झाड़ू पोछा हो गया हमारा योग। क्यों रहा? क्योंकि हमने कोई संकल्प लेकर के, कोई लक्ष्य लेकर के नहीं बैठे। तो परम धाम हम पहुंचे निर्विघ्न तरीके से बीच में, और कई लोग तो हैं वो बीच से ही वापस आ जाते हैं परम धाम, वो भी नहीं पहुंचते, वो बीच में ही युद्ध करते रहते हैं, व्यर्थ संकल्पों की युद्ध चलती रहती है। तो जब हम युद्ध करते हैं, तो युद्ध करते करते, युद्ध में क्या होता है? मेहनत। और जब मेहनत करते हैं तो थक जाते हैं, थक जाते हैं तो सो जाते हैं। अच्छा, उनको पता भी नहीं चलता, ऐसी अवस्था आ जाती है कि उनको पता भी नहीं चलता कि हम योग कर रहे हैं या सो रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं। तो वो एक मिनट, ये सुनिए, इसी में आ जाएगा। उन जिसको बाबा कहते शून्य अवस्था, जिसमें उनको ये नहीं पता चल रहा कि मैं योग कर रहा हूं या सो रहा हूं। कोई उनको धक्का देकर के उठाएगा ना, भाई थोड़ा अलर्ट होकर के बैठो, तो क्या कहेंगे? अरे मैं कितना अच्छा साइलेंस का अनुभव कर रहा था, तुमने मुझे है ना डिस्टर्ब कर दिया। तो ये मना हमारा संकल्प, एक संकल्प में स्थित हो जाना लंबे समय तक, जितनी संकल्प भी ज्यादा ना चले, एक संकल्प जैसे बीज रूप अवस्था क्या है, एक संकल्प में स्थित हो जाना। और जब हम लंबे समय तक एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं तो वही फिर ज्वाला स्वरूप स्थिति जिसमें हमारे विकर्म विनाश होने लगते हैं। तो इस रूहानी यात्रा में सफल होना है हा? तो क्या करना पड़ेगा? लाइट, हल्का, हम हल्के रहें, कोई बोझ ना हो। अगर बोझ होगा तो उड़ेंगे। देखो दुनिया में एक व्यक्ति है जो मोटा है ना, और एक व्यक्ति है जो पतला है। मोटा व्यक्ति चलेगा तो थोड़ी देर चलेगा, थक जाएगा। तो जब शरीर मोटा होता है तो हमें चलने फिरने में थकावट जल्दी आ जाती है और हम बैठ जाते हैं। अब जिस्मानी यात्रा में शरीर मोटा होगा तो वो चल नहीं सकेगा, यात्रा कर नहीं सकेगा। इसी प्रकार रूहानी यात्रा में जिसकी बुद्धि मोटी हो जाती है वो उड़ नहीं पाता है, उड़ने की कोशिश करता है और आधे रास्ते से वापस आ जाता है। जिस प्रकार जिस्मानी यात्रा में हमें ध्यान रखना पड़ता है कोई ज्यादा सामान ना हो, कोई बोझ ना हो। आवश्यक सामान तो रखेंगे, लेकिन कई है ना बहुत ज्यादा सामान तो रास्ता उसको सुखद रास्ता रहेगा नहीं रहेगा। जितना जिसके पास सामान कम होगा उतना उसका रास्ता सुखद रहेगा। ऐसे ही इस रूहानी यात्रा में जितना हम हर प्रकार के बोझ से मुक्त होंगे, लाइट होंगे, हल्के होंगे, तब हम उड़ सकेंगे। अच्छा अब वहां शरीर मोटा होता है ना, थकावट जल्दी आती, तो हम किसी का सहारा ढूंढते हैं, कोई हमें पकड़ ले या कोई डंडे का सहारा, किसी व्यक्ति का सहारा। और यहाँ जब बुद्धि मोटी हो जाती है तो हम एक दूसरे का, हम कैसे योग लगाएं, थोड़ा योग की विधि बताओ, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प कैसे हम उसका सहारा ढूंढते हैं। अच्छा अब और कारण में जाएं, अब शरीर मोटा क्यों हुआ? क्योंकि खान पान की परहेज नहीं रही, जो कुछ आया हम खूब खाते रहे, है ना। आपको अनुभव होगा ना, जब चटनी, अचार, समोसा, तली वली चीजें और भोजन के साथ में कहते, कई लोग कहते ना जब तक चटनी अचार नहीं मिलता ना अंदर में जाता नहीं है बढ़िया, और वो टेस्टी बनाता है, खूब मिठाइयां खाए, तली वाली चीजें खाए, तो शरीर मोटा हो गया, बैठे रहे, कुछ काम नहीं किया। ऐसे ही अब यहाँ पर रूहानी यात्रा में चटनी अचार क्या होता है? संसार समाचार, है ना। अगर कोई आवे हो कहा आज का ताजा समाचार सुना, तो कहे ताजा समाचार, हाँ तुरंत इतना मुरली में कान खड़े नहीं होंगे, उसमें कान खड़े हो जाएंगे, अच्छा ऐसा हुआ क्या, और उसे हाँ निकलवाएंगे, फिर क्या हुआ। अब जब हम इधर उधर का व्यर्थ समाचार खूब सुने और अपने बुद्धि में भरे, तो बाबा से हमारी बुद्धि लगेगी? वो तो परम पवित्र है शिव बाबा, उससे हमारी बुद्धि लगेगी हा? नहीं लगेगी। तो इधर हमने अशुद्ध संकल्प रूपी खूब भोजन दिए, व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन दिए, व्यर्थ संसार समाचार का है ना, निगेटिव बातों का खूब अंदर में दिए, तो बुद्धि हमारी मोटी हो जाएगी, फिर बुद्धि उड़ नहीं सकेगी। तो परहेज करना है, जैसे वहां फिर डॉक्टर बताता है परहेज करो, है ना, अब ज्यादा तुम ये चटनी अचार समोसा मना तली वाली चीजें छोड़ो, परहेज करो। तो जब हम परहेज करने लगते हैं तो थोड़ा सा ठीक होने लगते हैं। ऐसे ही इस रूहानी यात्रा में जब हम परहेज करेंगे, किस चीज का परहेज? व्यर्थ का परहेज, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, व्यर्थ बोल हो, व्यर्थ कर्म हो, जब इन सब चीजों का परहेज रखेंगे तब आत्मा शक्तिशाली बनेगी, और जब आत्मा शक्तिशाली बनेगी तब आत्मा उड़ सकेगी। अच्छा, वहां पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जिस्मानी यात्रा करने के लिए शरीर हमारा स्वस्थ रहे, और शरीर स्वस्थ रहने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो यहां भी अब वो एक जन्म की बात है, है ना, इस जन्म की बात है, इसलिए कहते भाई सुबह एक्सरसाइज जरूर करो। अब यहां हमारी 63 जन्मों की बीमारी है, एक जन्म की बीमारी है, इसलिए एक बार जरूर करना है। अब 63 जन्मों की बीमारी आत्मा पर लगी है, इसलिए बाबा ने कहा एक बार करने से काम नहीं, यहां पर कम से कम 8 बार, बाबा ने कहा ना 5 स्वरूपों का अभ्यास कम से कम 8 बार करो, ड्रिल करते रहो, बार बार करते रहो। अच्छा, अब वहां पर हम विटामिन युक्त भोजन करते हैं, तो बाबा ने कहा यहाँ विटामिन युक्त भोजन करो। वो विटामिन युक्त भोजन आपको बाबा रोज मुरली, हाँ, मुरली में जो बाबा मुरली सुनाते हैं, ये क्या है, अभी आपने कितना सुंदर गीत सुना, याद है मुरली क्या है, क्या गीत में कहा, अभी जो गीत बजा कितना सुंदर गीत था, सारी मुरली की महिमा, गीतों में सारी मुरली की महिमा, मुरली शीतल बनाती है, मुरली चारों युगों का ज्ञान देती है, मुरली परमात्मा से जोड़ती है, मुरली हमें शक्तिशाली बनाती, अभी आपने गीत में सुना ना, ये गीता का ज्ञान है। हाँ, तो ऐसे ही हमें, जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही रूहानी यात्रा करने के लिए हमें आत्मा को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, है ना। तो शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए एक एक्सरसाइज, अच्छा दूसरा क्या करते हैं, परहेज भी करते हैं। आपने एक्सरसाइज कर लिया, विटामिन युक्त भोजन कर लिया, लेकिन परहेज नहीं किया तो चलेगा काम, नहीं चलेगा, है ना। तो परहेज, व्यर्थ का परहेज, नहीं तो हम अमृत बेला योग किया, शाम का योग किया, सारा दिन में सेवा की, मुरली सुनी, अपने अंदर शक्ति जमा की, और अगर हमने व्यर्थ बोल दिया, व्यर्थ सुन लिया, व्यर्थ कर लिया, हाँ, व्यर्थ सुना दिया, तो वो शक्ति खत्म। तो व्यर्थ का परहेज, और एक तो व्यर्थ का परहेज, दूसरी बात रोज 2 बार इंजेक्शन लगाना कम से कम। कौन सा इंजेक्शन, योग का इंजेक्शन, एक है अमृत वेला योग और एक है शाम का योग। कम से कम 2 घंटा तो बैठ करके योग होना ही चाहिए, है ना। और आप संकल्प करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी संकल्प किया कि मुझे एक दिन भी अमृत वेले का योग मिस नहीं करना है। जब ज्ञान सरोवर आया तो आज 28 वर्ष हो गए मैंने, लेकिन मैंने दृढ़ संकल्प, बाबा ये काम आपका है, मुझे मेरा ये संकल्प है कि अमृत वेला का योग एक दिन भी मिस ना हो। तो इन 28 वर्षों में एक दिन भी मिस नहीं हुआ, लेकिन मैं ये जो है बाबा की महिमा मानता हूँ, बाबा की मेहरबानी मानता हूँ। चाहे मैं 11 बजे सोया हूँ, कई बार सेवा के कारण 11-12, कई बार है ना बाबा से मिल करके नीचे शांतिवन से आना होता था तो 12-1 भी बज जाता था, लेकिन 4 बजे के पहले बाबा हमें उठाई। तो ये सब किसकी मेहरबानी, बाबा को हमने संकल्प दे दिया ना। तो हम बहुत नियम बनाते हो, ये करेंगे वो करेंगे ये पुरुषार्थ, और अमृत वेला ही ना उठते हो तो बनेंगे बाप समान क्या। तो जो बेसिक चीजें हैं, जो बाबा की बनाई हुई दिनचर्या है, पहले हम इसमें तो एक्यूरेट रहे, तब तो हमारे यहाँ रूहानी यात्रा हम कर सकेंगे, आत्मा शक्तिशाली बन सकेगी। अभी 12 बज रहा है, 1 मिनट, 2 मिनट हम सभी बाबा की याद में बैठते हैं।
को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है।
शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है।
शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है।
धाम में तुम्हें
सतयुग में अब तुम्हें आना है।
धाम में तुम्हें जाना है।
ओम शांति। तो शरीर को शक्तिशाली बनाने का जैसे हमें ध्यान रहता है, वैसे ही आत्मा को भी शक्तिशाली बनाने का ध्यान रहे। तो एक 8 बार आपने एक्सरसाइज कर ली, दूसरा आपने 2 बार इंजेक्शन ले लिया, और गोली कितने बार? कम से कम 3 बार, सुबह दोपहर शाम। कौन सी गोली? ज्ञान की गोली। ज्ञान की गोली अर्थात मुरली, है ना। दादियां तो है ना, कितनी, कोई दादी तो 6 बार पढ़ती थी, 8 बार पढ़ती थी जानकी दादी से। जब जानकी दादी कुछ और दादियों की अपेक्षा 1 वर्ष लेट आई, तो बाबा से पूछा जानकी दादी ने कि बाबा मैं क्या पुरुषार्थ करूं, और दादियों की अपेक्षा मैं लेट आई हूं ज्ञान में। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम कितने बार मुरली पढ़ो? 8 बार। तो दादी ने कहा, मैं तो 16 बार मुरली पढ़ूंगी। देखो उनकी लगन देखो। तो ऐसे हम कम से कम 3 बार तो पढ़ लें, सुबह दोपहर शाम। और पढ़ना माना एक चीज, मुरली से एक महावाक्य, जैसे माताओं को अनुभव होगा वो व्रत रखती थी, है ना, तो उसी तरह व्रत के तरीके से आज बाबा ने ये कहा है तो हमें ये करना ही है। तो आप 8 बार 500 रुपयों का अभ्यास करोगे, 2 बार योग का इंजेक्शन लगाओगे, 3 बार मुरली का गोली लोगे, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, है ना। आज बाबा ने कहा ना, रूहानी यात्री हूं, इस स्मृति में रहोगे तो फिर क्या हो जाएगा, 21 जन्मों के लिए निरोगी काया बन जाएगी। प्रश्न में क्या बोला? हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जो सतयुग में काम नहीं आती लेकिन भक्ति मार्ग में बाबा को काम आती है, वो कौन सी चीज है? आप लोग बड़े होशियार हैं, है ना, मुरली बहुत ध्यान से सुनते हैं, बड़ा फटाफट उत्तर देते हैं, बहुत अच्छा। दिव्य दृष्टि की चाबी ये सतयुग में काम में नहीं आती। हाँ, कब काम आती है? हाँ, भक्ति काल में, द्वापर युग से। किस काम आती है? भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। और बाबा ये चाबी हमें नहीं देते, क्यों नहीं देते? बाबा ने कहा इसके बदले तो तुमको मैं क्या दे देता हूं, विश्व की बादशाही। पसंद है ना विश्व की बादशाही, या चाबी चाहिए? चाबी चाहिए या दोनों चाहिए? चाबी भी चाहिए, विश्व की बादशाही भी चाहिए, दोनों में से तो एक नहीं। लेकिन बाबा ने कहा ये तो चाबी तो मैं नहीं दूंगा कुछ भी हो, क्योंकि ये चाबी आपके काम का भी नहीं है। चाबी लेकर आप करेंगे ही क्या, विश्व की बादशाही तो 21 जन्म आराम से। तो बाबा ने कहा इसके बदले तुम्हें मैं विश्व की बादशाही दे देता हूं, है ना। और बाबा ये चाबी अपने पास रखता है साक्षात्कार कराने के लिए। और बाबा ने कहा तुम ऐसे बन जाओ, तुम खुद साक्षात्कार मूर्त बन जाओ। जितना हम लाइट स्वरूप में रहेंगे, अपने फरिश्ते स्वरूप में रहेंगे, उतना हम खुद साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, और बाबा ने क्या कहा? हाँ, सतयुग में कितने कैरेट होते हैं? जब आत्मा सतो प्रधान होती तो कितना कैरेट, फिर रजो में कितना कैरेट, तमो प्रधानता में कितना कैरेट, बताओ? 24 कैरेट सतो प्रधान, और सतो में 22, और रजो में 18, और तमो में, वाह बिल्कुल राइट उत्तर दिया, गुड, बहुत अच्छा, बहुत ध्यान से मुरली सुनते हैं आप सब। तो कैसे आत्मा की जैसे स्टेज नीचे की ओर आती है, तो उसका कैसे कैरेट में गिरावट आती जाती है। और बाबा ने कहा सेंसिबल बन करके क्या करना है, दूसरों को भी सेंसिबल बनाना है, है ना। तो हम सब बाबा के बच्चे सेंसिबल समझदार है ना, तो संगम युग पर सबसे समझदार किसको कहेंगे? हम है ना समझदार, जो बाबा के बच्चे बने वो तो समझदार हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा समझदार कौन? अगर हम बाबा के बच्चे तो बन गए, अगर अपना हम समय स्वास्थ्य संकल्प व्यर्थ गंवाते हैं तो समझदार कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो किसको समझदार कहेंगे? जो अपने समय श्वास संकल्प को सफल करता है। और किसको समझदार कहेंगे? क्या क्या होता है? ज्ञान सुनता है, दूसरों को सुनाता है। समझदार वो जो आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहता है। समझदार वो जो संपूर्ण पवित्र आत्मा है। समझदार वो जो मन बुद्धि सहित संपूर्ण समर्पित है ना, तन की समर्पित कोई बड़ी, मन बुद्धि से समर्पित। समझदार वो जो आज्ञाकारी है, जो वफादार है, जो फरमान वरदार है। समझदार वो जो सुखदेव है। समझदार वो जो सबकी दुआएं लेता है, सबकी आशीर्वाद लेता है। समझदार वो जिसके पास पुण्य कर्मों का खजाना है, है ना, तब कहेंगे ना समझदार। तो हम देखें है हम इतने समझदार हैं किस, अच्छा दुनिया में समझदार। अब दुनिया की परिभाषा बाबा की डिक्शनरी में तो जीरो है। दुनिया में किसी के पास पद पोजीशन है, धन दौलत है, गाड़ी है ना, नौकर चाकर, तो उसको कहेंगे बहुत समझदार, इसने अपने जीवन में बहुत कमाई की। लेकिन बाबा की डिक्शनरी में वो क्या है? जीरो। क्यों? कि आज वो करोड़पति हैं, कल रोडपति, ठीक है, कल वो रोड पर आ जाते हैं, है ना। लेकिन जिसने अपने पास अविनाशी खजाना जमा किया तो वो तो समझदार है ना। तो बाबा के हम सब बच्चे समझदार, लेकिन अब हमें अपने अंदर देखना है कि समझदार हम हैं तो किसी भी कारण से हम अपनी स्थिति खराब ना करें। समझदार वो जो किसी भी कारण से अपनी स्थिति खराब नहीं करता। समझदार वो जो अपने समय स्वास्थ्य संकल्प को पूरी तरह से सफल करता है। तो हम देखें ऐसे है, और हम अपनी स्थिति तो किसी ने जरा भी कुछ बोला बस स्थिति खराब। जैसे हमने अपने स्थिति का रिमोट सामने वाले के हाथ में पकड़ा दिया है, भाई चाहे तो आप हमारी महिमा करके हमें खुश रखो और चाहे तो हमारी एक शब्द कड़वा बोल करके हमारी खुशी छीन लो, आपके हाथ में रिमोट है, ऐसा हम बन जाते हैं। तो ऐसा करना है क्या? अपनी स्थिति का रिमोट दूसरे के हाथ में देना है क्या? तो किसके हाथ में रखना है? अपने हाथ में रखना है। बाबा ने कहा खुशनुमा चेहरा ये तुम्हारा सबसे बड़ी सेवा करता है, तुम खुश रहते हो तो बाबा को प्रत्यक्ष करते हो। हम कहें हमें भगवान मिला है और हमारा चेहरा लटका हुआ उदास हो तो कोई मानेगा? मानेगा? वो कहेगा भाई हमें तो विश्वास नहीं पड़ता कि आपको मिला है, चेहरे पर 12 बज रहा कह रहे हैं भगवान मिला है। और अगर आप हम खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं तो आप बोलो या ना बोलो वो आपके पास आएगा और आपसे पूछेगा भाई आप कहाँ जाते हो, आप क्या करते हो, आप इतने खुश रहते हो, हमें भी ले चलो। ऑटोमेटिक सेवा हो गई ना। तो किसी भी कारण से अपनी स्थिति खराब नहीं करना है, तब कहेंगे समझदार। देखो दो दो सेवाधारी भाई हैं, कैसे हम अपनी छोटी छोटी बातों में स्थिति खराब कर देते हैं। दो सेवाधारी भाई, एक सेवाधारी पहुंचता है डाइनिंग हॉल में, लेट पहुंचा सेवा करते हुए, उसको लेट हो गया और डाइनिंग में पहुंचता है तो देखा कि खाना तो खत्म हो गया है, सिर्फ सब्जी रोटी पड़ी है, वो भी सब्जी टूटी हुई नीचे। अब वो अपनी उसकी स्थिति खराब, ये क्या डाइनिंग हॉल वालों को इतना नहीं है क्या, मैं इतना सेवा करके आया और यहाँ सब खाना खत्म, ये थोड़ा सा सब्जी रोटी से ठंडा पड़ा हुआ है। और वो गुस्सा के मारे गुस्सा आ जाता है, कहता मैं नहीं खाऊंगा ना, कल से मैं सेवा में नहीं जाता हूँ, स्थिति खराब। और दूसरा सेवाधारी आया, वो देखा उसके सामने भी वही, अब वो दोनों हाथ उठा करके भगवान कहते हैं हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आखिर दो चार रोटी हमारे लिए बचा के ही रखी। और वो भी बाबा आपको पता था ना कि सेवा हमें रोटी तोड़ने की भी जरूरत नहीं, तोड़ा हुआ केवल मुख में रखना है ना। तो देखे वो पॉजिटिव सोच करके आनंद, है ना, वाह बाबा वाह, आपको पता था ना कि इतना हम मैं लेट आऊंगा इसलिए मेरे लिए आपने सब कुछ बचा है, सब्जी भी रखा है तो रोटी भी रखा है। अब वो प्यार से खाता है, आनंद होकर के खाता है। तो कोई भी बात में हम पॉजिटिव सोच सोच करके अपने आप को आनंदित रख सकते हैं और निगेटिव सोच सोच करके अपने आप को परेशान, वो हमारे हाथ में है। तो समझदार वो जो सदा हर परिस्थिति में हर बातों में पॉजिटिव सोच करके अपने आप को आनंदित रखे। और आगे बाबा ने क्या कहा, अपने मैनर्स कैसे रखने हैं, बहुत रॉयल, बहुत मीठी। मुझे याद आ रहा है कि एक बार मनोहर दादी सुना रही थी कि ब्रह्मा बाबा से एक महात्मा मिलने आया, तो वो महात्मा बैठा था कि उनके बाबा आएंगे और हम मिलेंगे। तो इतने में एक दादा थे विश्व रतन दादा उधर से जा रहे थे, तो महात्मा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा बाबा जी ओम शांति। तो मनोहर दादी ने कहा ये हमारे बाबा नहीं, ये तो हमारे भाई हैं, हमारे बाबा तो अभी आने वाले हैं। तो कहा आपके बाबा आने वाले हैं, लेकिन मैंने तो आपके बाबा को देख लिया। तो दादी कहने लगी हमारे बाबा अभी तक आए नहीं, तो आपने देखा कैसे? ये तो कहा नहीं नहीं मैंने तो देख लिया। कहा कैसे? तो महात्मा कहता है मैंने ऐसे देखा जब आपके भाई में इतनी रूहानियत, इतनी अलौकिकता, इतनी दिव्यता, तो आपके बाबा में क्या नहीं होगा, है ना? जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, आपके बाबा कितने महान होंगे, मैंने देख लिया। तो ये होता है अपने व्यक्तित्व द्वारा सेवा करना, अपने चाल चलन के द्वारा सेवा करना, ये सबसे बड़ी सेवा। तो हमारा उठना बैठना चलना, क्योंकि हम अभी अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हैं? देवताई संस्कार। देवताई संस्कार भरेंगे तभी तो जाकर देवता बनेंगे, है ना? कई बार कई लोग बोलते भी हैं, हाँ भाई ये तो जैसे देवता, हमने किसी को मदद किया, समय पर सहयोग किया, तो सामने वाला क्या कहता है, आप तो मेरे लिए देवता बन करके आ गए। तो वो हमारे अंदर दिव्यता अलौकिकता किससे आएगी? वो मिठास कैसे आएगा? योग से। जितना हम बाबा की याद में होते हैं ना, उतना जो बाबा के गुण शक्तियां, वो सारी गुण शक्तियां हमारे जीवन में भी आ जाती है, हम बाबा समान बन जाते हैं। और आगे बाबा ने क्या कहा, रूहानी यात्री हो, है ना, ये सदा याद रहे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स अपने पास नोट रखने हैं, है ना, उस पर विचार सागर मंथन करना है। अच्छा आगे वरदान, वरदान में क्या था? अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। तो अंतर स्वरूप माना अंतर्मुखता। जब हम अंतर्मुखी बन करके रहते हैं तो किन बातों से हम धोखा नहीं खाएंगे? क्या कहा बाबा ने? चाहे संबंध हो, पदार्थ हो, है ना, कोई भी परिस्थिति हो, बातें हो, हम किसी भी चीज का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो जितना हम स्नेही परमात्म स्नेही बनकर के रहते हैं, उतना हम बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा करते हैं। पुरुषार्थ का सबसे सहज साधन है ना स्नेह, प्यार, बाबा से प्यार। और बाबा से प्यार, हम कहें हमारा बाबा से प्यार है, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा से प्यार माना किस चीज से प्यार हो? मुरली से प्यार। हम कहें हमारा बाबा से बहुत प्यार है, बाकी मुरली सुनने के लिए फुर्सत नहीं है, तो बाबा मानेगा? कोई मुझसे कहे आपसे बहुत प्यार है, और हम कहें जरा एक गिलास पानी ले आना, और वो यहां से जाए, नहीं नहीं आपसे बहुत प्यार है, बाकी पानी लाने नहीं जाऊंगा। तुम भले प्यासे बैठे रहो। तो प्यार माना उसकी बातों से प्यार, उसकी शिक्षाओं से प्यार। बाबा से प्यार माना बाबा के यज्ञ से प्यार, बाबा से प्यार माना बाबा के बच्चों से प्यार। हम कहीं बाबा से हमारा बहुत प्यार है, बाकी सेवा करने के लिए हमें फुर्सत नहीं है, हम बहाना, है ना, कोई सेवा का प्लान, आप टीचर बहन बना रही हो उस समय हम कोई ना कोई बहाना कि नहीं नहीं मेरे को तो ये करना है, वहां जाना है, तो प्यार माना जाएगा? सेवा का चांस मिले उस समय हमें तो ये सोचना चाहिए कि हाँ मेरा कितना सुंदर भाग्य है कि मुझे ऑफर किया गया, मुझे खास बोला गया, बाबा की हमारे ऊपर विशेष दृष्टि है। अगर सेवा का चांस नहीं मिलता तो ये कोई ना कोई शूद्रपन के संस्कार हैं जो हमें और सेवा का चांस मिल रहा है तो समझो हमारे हमारा बाबा विशेष भाग्य बनाना चाहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, समझो सारे लोग मुरली सुनकर के चले गए, बहन जी ने आपको बोला थोड़ा सा, है ना, कुछ सेवा थी, तो कई बार हम मैं ही दिखाई पड़ती, और कोई नहीं है क्या? अंदर में ये आता है, सारे लोग चले गए और हम ही को रोकते हैं। लेकिन उस समय सोचना चाहिए, वाह मेरा भाग है ना, कितना बड़ा भाग है, बाबा मेरा ही विशेष भाग बनाना चाह रहा है, मेरी सेवा सबको पसंद आती है, तभी तो मुझे कहा गया, दूसरे को क्यों नहीं कहा गया? तो इस प्रकार सोच करके हम आनंदित रह सकते हैं। तो सच्चे स्नेही, और कई बार ऐसा होता है कि हम कहते बाबा से हमारा बहुत प्यार है, बाबा से हमारा बड़ा स्नेह है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में बड़ा झंझट है। अच्छा, ब्राह्मण परिवार भी इसमें आता, लेकिन कोई एक आत्मा उसको कहते इससे तो भगवान बचावे, इससे तो, इसके मुख से तो हमेशा पत्थर ही निकलता है। आप सोचो उस आत्मा को भी किसने चुना? बाबा ने चुना, भगवान की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, भगवान ने उसको पसंद किया, और हम कह रहे हैं इसे तो भगवान बचाए, इसे तो दूर रहो, इसकी तरफ तो देखना ठीक नहीं, तो ये अच्छा है? तो जो जिसको बाबा ने पसंद किया, जो बाबा को पसंद वो हमें भी पसंद, जो बाबा को पसंद नहीं वो हमें भी नहीं। तो इस प्रकार से हम रखेंगे। अब इसकी आप लिस्ट बनाओ, बाबा को क्या क्या पसंद है और क्या वो हमें भी पसंद है, नहीं तो क्यों? बाबा को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति बहुत पसंद है, बाबा को पढ़ाई बहुत पसंद है, है ना? तो आप लिस्ट बनाएंगे और इसके ऊपर देखेंगे, अपने से मिलाएंगे, जो बाबा को पसंद, तो हम बार बार अंदर से एकांत में बैठ करके अपने आप से बातें करनी है। हमारे जीवन का लक्ष्य है बाबा समान बनना, तो जो बाबा को पसंद है वही कार्य मैं कर रहा हूं, जो बाबा को पसंद नहीं वो हमें भी पसंद नहीं, ये अंदर में दर्शता हो। अच्छा, स्लोगन क्या था आज का? स्लोगन क्या था? निश्चय और किस बात का नशा? अधिकारपन का नशा, जन्म सिद्ध अधिकार का नशा। अगर निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार का नशा रहे तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। कौन सा निश्चय रहे? कौन है हमारे साथ, मैं कौन और मेरा कौन? दादी जानकी जी हमेशा सुनाती थी ना कि ये निश्चय रखो कि मैं कौन और मेरा कौन, किसने मुझे पसंद किया है, किसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है, किसने मुझे सिलेक्ट किया है, किसका हाथ हमारे सिर के ऊपर है? किसका हाथ है आपके सिर के ऊपर? अच्छा, कुछ लोगों ने बोला भगवान का हाथ है, और जिन्होंने नहीं बोला उनके सिर के ऊपर किसका हाथ है? हाँ ना, जिन्होंने बोला तो उनके ऊपर भगवान, जिन्होंने नहीं बोला वो क्या समझते हैं? नशे से बोलो ना, हमारे सिर के ऊपर किसका हाथ है? स्वयं भगवान का हाथ है, हजार भुजा वाले का हाथ है। दुनिया में कोई जाते हैं व्यक्ति किसी गुरुओं के पास, महात्माओं के पास, तो क्या कहते हैं? गुरुजी हमारे सिर के ऊपर हाथ रख दो, और गुरुजी उनके सिर के ऊपर हाथ रख देते हैं, तो बड़े नशे से कहते हैं हमारे सिर के ऊपर तो गुरुजी ने हाथ रख दिया है, और आपके सिर के ऊपर किसने हाथ रख दिया? जिसके ऊपर भगवान ने हाथ रख दिया हो, जिसको भगवान ने चुन लिया हो, भगवान अपनी गोदी में बिठा लिया, भगवान अपनी छत्र छाया में, तो कितना। बाबा एक मुरली में कहा, अगर कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट आपके पास आए और आपको ये कहे आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, एक है ना एनर्जी है जिसके आधार से चल रही है शरीर, तो आप मानेंगे उसकी बात? मानेंगे? नहीं मानेंगे। इस बात में आपको पूरा निश्चय है, इस निश्चय से कोई हिला नहीं सकता। तो बाबा ने कहा जैसे ये निश्चय है कि मैं आत्मा हूं, ऐसे आगे ये भी निश्चय हो कि मैं कौन सी आत्मा हूं, न केवल मैं आत्मा लेकिन कौन सी आत्मा, कौन सी आत्मा है, कौन सी आत्मा है? पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। आप अपने टाइटल, अपने स्वमान को सामने लाओ, कितने सुंदर सुंदर, आप देखो दुनिया की आत्माएं सोच भी नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती, कितने ऊंचे ऊंचे महावाक्य बाबा ने, कितने सुंदर सुंदर टाइटल। बच्चे तुम ये हो, जान के नूर हो, परमात्म दिल तक नसीन हो, नैनों के नूर हो, पद्मा पद्म भाग्यशाली हो, विश्व कल्याणकारी हो, पूर्वज हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, है ना, कितने सुंदर सुंदर टाइटल। तो जब हम श्रेष्ठ स्मृतियों में रहेंगे, कई बार हम ये कहते हैं कि हमें पुरानी घटना, पुरानी बातें बार बार याद आता है और दुख देता रहता है, परेशान करता रहता है, हम भुलाना चाहते हैं फिर भी नहीं भूलता। तो आप रोज इन श्रेष्ठ स्मृतियों की तिलक लगाएं, माना स्वमान में रहने की कोशिश करें। जो बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान दिए हैं, जितना हम उन स्वमान में रहेंगे उतना जो व्यर्थ है वो ऑटोमेटिक व्यर्थ बातें डिलीट होती जाएगी। तो निश्चय और नशा, अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार, क्या बाबा ने जन्म सिद्ध अधिकार दिया है? सफलता। बाबा ने कहा मेरा जो कुछ भी है, सारे वरदान, सारी शक्तियां, सारे खजाने, सब कुछ किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। बाबा ने कहा मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए तो है, लेकिन मैं खुद भी तुम्हारा हो गया। तो और कुछ चाहिए क्या? अच्छा, वो भी टाइटल है, ठीक बात है। वरदानी मुहूर्त है ना, आप लोग वरदानी मुहूर्त है ना, तो 3 दिन अपने वरदानी मुहूर्त के समान में रहना। मैं वरदान देने वाली देवी हूं, तो वरदान देने वाली देवी के सामने कोई कैसा भी हो तो वो कभी किसी के ऊपर वो नाराज नहीं होती, डिस्टर्ब नहीं होती, कोई है ना, कैसी भी आत्मा आ जाए, लेकिन वरदानी आत्मा देवी वो सदैव प्रसन्न निश्चित ही दिखाते हैं, उसको वरदानी मुद्रा में ही दिखाते हैं। तो क्षमा करने की भावना, रहम की भावना, शुभ भावना, कल्याण की भावना, स्नेह की भावना, है ना, सबको आगे बढ़ाने की भावना, दया की भावना, यह है वरदानी मुहूर्त। अच्छा, तो बाबा स्नेह में वो क्या लेता है और क्या देता है? बाबा ने कहा अपनी सारी कमी, कमजोरियां, अवगुण, बुराई, जो तुम्हें दुख देता है वो सब मुझे दे दो, और मेरे से सारे वरदान, सारे खजाने, सारे शक्तियां ले लो। ठीक है, पसंद है ना ये चीज? बोली नहीं रहे पसंद है ना? बाबा से सारी शक्ति, सारे खजाने, वरदान लेना है, उसको सारी कमी कमजोरियां देना है। अभी बाबा एक मुरली चल रही थी, बाबा ने उसमें कहा कि मैं और कुछ मांगू तो ना दो, कोई अच्छी चीज मांगू तो भले ना दो, लेकिन मैं क्या मांग रहा हूं आपसे? वो चीज जिससे आप परेशान हैं, जिससे आप दुखी, वही चीज तो मैं आपसे ले रहा हूं। तो बाबा से सारे वरदान खजाने ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये थी आज की मुरली। अब हमें ये आज की मुरली से ये चीज जरूर लेना है जो आज बाबा ने कहा, एक टॉपिक। तो ये आप रोज नियम बनाना कि रोज की मुरली से एक टॉपिक लेकर के उसके ऊपर चिंतन मंथन करके लिखना, और एक बात दृढ़ता के साथ जो बाबा ने कहा वो हमें करना है, इस दृढ़ संकल्प के साथ रोज मुरली सुनना। ठीक है ना? तो आप सभी ने सुना प्यार से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे हम सभी, उसके बाद फिर आप सभी भोजन पर जाएंगे, फिर शाम को 4:30 बजे इसी हाल में आप सबको पहुंचना है। 4:30 से 5 किसी न किसी भाई बहनों के द्वारा योग की कमेंट्री होगी, और फिर 5 बजे से आपका क्लास होगा। ओम शांति।